جزاك الله. شكرا، الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقل رب زدني علما، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ربنا زدنا علما. جس کلاس میں ہم اپنے حضرت پیوز انفتار احمد نقشبندی دامت برکاتہم کی کتاب مثالی مد میں سے پڑھتے ہیں، اور آج کل اس کا آخری مضمون چل رہا ہے مثالی شاگرد. اور اس میں ہم لاسٹ ٹائم آخری کلاس میں پچھلے ہفتے پڑھ رہے تھے اسلام کا پہلا مدرسہ اور اس کے مثالی طلباء. تو حضرت نے جو نبی علیہ السلام نے مدینہ طیبہ پہنچتے کے ساتھ ہی مدرسے کی بنیاد رکھی تھی مسجد نبوی کے اندر، تو اس کا ذکر فرماتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ اس مدرسے کے جو طلباء تھے وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور خلفاء راشدین اور بڑے بڑے صحابہ کرام وغیرہ تھے. تو اس کے بارے میں ہم نے بات کری تھی. اب ہم تھوڑا سا آگے پڑھ لیتے ہیں جتنا بھی باقی وقت بچ گیا ہے. کہ فرمایا کہ یہ جو طلباء تھے، پیج نمبر 189 کے اوپر ہیں، یہ اتنے محبوب تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو پیغام بھیجا، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، کہ آپ اپنے آپ کو استقامت کے ساتھ ان لوگوں کے ساتھ رکھیے جو صبح و شام اپنے رب کو اس لیے پکارتے ہیں کہ وہ اس کی خوشنودی کے طلبگار ہیں. تو بات ہوئی تھی کہ ان لوگوں کو یا ان لوگوں کی نیت میں جو اخلاص تھا اس کی گواہی خود رب العزت نے دی، جو کہ ان کا خالق اور مالک ہے اور ان کے دلوں کے جذبات کو سب سے اچھی طریقے سے جانتا ہے. تو اس سے زیادہ بڑی سرٹیفیکیشن اور کسی کو نہیں مل سکتی. تو فرمایا کہ اگر ہم فقط سمجھنے کی خاطر اس کا ترجمہ اپنی زبان میں کریں تو یوں بنے گا کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے آپ کو نتھی رکھیے ان لوگوں کے ساتھ جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں اور اللہ کی یاد میں لگے رہتے ہیں، ان کے ساتھ آپ وقت گزارا کیجئے. ٹھیک ہے، اللہ کی یاد والوں کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم فرما رہے ہیں، جو کہ خود بھی اللہ تعالیٰ کی یاد میں سب سے زیادہ لگے رہتے تھے. ٹھیک ہے، یعنی کسی نعوذ باللہ غافل کو نہیں کہہ رہے ہیں کہ تم ذاکرین کی صحبت میں رہو، بلکہ ذاکر کو کہہ رہے ہیں کہ تم ذاکرین کی صحبت میں رہو. ٹھیک ہے، تو جو آلریڈی ذاکر ہے اس کو ذاکرین کی صحبت فائدہ مند ہے، یا اس سے یعنی اس کا اللہ تعالیٰ اس کو حکم فرما رہے ہیں. تو پھر جو غافلین ہیں ہمارے آپ جیسے، لیکن ہمارے جیسے جو غافلین ہیں اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل، تو ان کے لیے پھر یہ بات کتنی زیادہ اہم ہوگی اور یہ حکم ہمارے اوپر کتنا زیادہ اپلائی ہوتا ہوگا. ٹھیک ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابہ کے درمیان آ کر بیٹھے اور فرمایا کہ یہ کیسے لوگ ہیں کہ جن کے درمیان بیٹھنے کے لیے اللہ نے مجھے وحی بھیجی ہے. یہ اللہ کے ایسے پیارے بندے تھے صحابہ کرام رضوان اللہم اجمعین. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبی بن کعب رضی اللہ عنہ سے فرمایا، ان اللہ امرنی ان اقرا علیک لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں سورۃ البینہ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب سناؤں. یعنی سورہ بینہ کا لفظ استعمال نہیں کیا بلکہ پہلی آیت جو ہے وہ پڑھ کے سنائی، یہ والی سورت پڑھنے کے لیے. تو انہوں نے عرض کیا حضرت عبی بن کعب رضی اللہ عنہ نے کہ وسمانی، کہ کیا اللہ تعالیٰ نے میرا نام لے کر فرمایا کہ عبی بن کعب کو سناؤ؟ ٹھیک ہے، یعنی ایسا حکم تو نہیں دیا کہ ان اپنے اپنے صحابہ کو سناؤ، اپنے ساتھ والوں کو سناؤ، کیا میرا نام لے کر کے کہا؟ کیونکہ نبی علیہ السلام کی بات سے ایسے ہی لگ رہا تھا. تو نبی علیہ السلام فرمایا نعم، تو فبکا، تو حضرت عبی بن کعب جو ہے وہ بے اختیار رونے لگ گئے کہ اللہ رب العزت میرا نام لے رہے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ. ٹھیک ہے، عرش کے مالک، پورے جہان کے مالک اور خالق کل جہان، وہ کسی یعنی ایک امتی کا نام لے رہے ہیں، نبی کا بھی نہیں، امتی کا نام لے رہے ہیں. तो ये ऐसे तलबा थे कि जिनको कुरान सुनाने की फरमाइशें अर्श से आया करती थी। अल्लाह को ये इतने महबूब थे, रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। निसाब तालीम फरमाते हैं कि हर मदरसे का एक निसाब होता है, करिकुलम होता है। इस मदरसे का भी एक निसाब था जिसका नाम था कुरान मजीद फुरकान हमीद। इस निसाब की तफसील करने के लिए अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा था, ठीक है, कि ये तो इजमाली किताब है, ये तो मेरा कलाम है, इसके अंदर हर चीज की तफसील नहीं होगी, लेकिन आप इसकी तफसील फरमाएंगे। तो इरशाद बारी ताला है, व अनजलना इलैका ज़िक्रा लितुबय्यिना लिन्नासि मा नुज़िला इलैहिम, कि ऐ मेरे परवर, ऐ मेरे पैगंबर, हमने तुम पर भी ये कुरान इसलिए नाजिल किया है, लितुबय्यिना, ताकि तुम लोगों के सामने उन बातों की वाज़ह तशरीह कर दो जो उनके लिए उतारी गई हैं, ठीक है, जो उनके लिए उतारी गई, मां उनजिला इलैहिम, जा उनकी तरफ जो उतारी गई है ना। अब उतारी तो नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर गई थी, लेकिन किसके लिए उतारी गई थी? सहाबा कराम के लिए उतारी गई थी, ठीक है। तो ये उन उन दलाइल में से ये आयत कुरान मजीद की एक दलील है कि जिसमें हदीस मुबारका की हुज्जियत मिलती है, हदीस मुबारका की हुज्जियत। ये देखो, कुरान मजीद के अंदर सारी तफसील अगर होती तो इस आयत में अल्लाह ताला वजह यानी नुजूल कुरान बयान फरमा रहे हैं कि आप उसकी तशरीह फरमाएं। तो नबी अलैहिस्सलाम की तशरीह जो है वो कुरान मजीद के अंदर तो मौजूद नहीं है, राइट। कुरान मजीद में तो जो है वो तो अल्लाह का कलाम है, तो नबी अलैहिस्सलाम की तशरीह किधर गई, वो कहाँ से आएगी? तो वो हदीस मुबारका के अंदर है। तो जो भी मुनकर हदीस होगा वो फिर दरअसल मुनकर कुरान भी हो जाता है, क्योंकि कुरान मजीद की इस तरह की जो दलीलें हैं वो साबित कर रही हैं कि हदीस के बगैर तो कुरान मजीद की तफसीर ही नहीं हो सकती, और अल्लाह ताला ने खुद फरमाया है। तो ऐसा शख्स जो होता है ना, फिर असल में कुरान का भी इनकार कर रहा होता है, लेकिन सिर्फ जो है ना वो अपने इनकार को स्टेप बाय स्टेप लेके चलना चाहता है, ताकि लोग जो है ना वो उसको एकदम से काफिर करार ना दे दें, बेवकूफों को या कम इल्मों को बेवकूफ बनाने के लिए। वो कहता है कि नहीं, मैं कुरान मजीद को मानता हूँ। जैसे वो अमेरिका में एक आंटी हमारे घर वालों के पास आया करती थी, तो वो कभी चली गई थी एक तरफ किसी उस जमाने का जो चैट चैट ग्रुप वगैरह होते थे, तो आके कहती हैं कि आई एम पार्ट ऑफ दैट ग्रुप, दैट इज कुरान ओनली, कुरान ओनली, है ना, वो अपने मजे स्टाइल से बोला करती थी, ओनली कुरान और कुछ नहीं, ठीक है। तो इसी तरह के बहुत सारे मुनकर हदीस होते हैं, तो जाहिर है वो बिल्कुल ही गलत बात कर रहे होते हैं, और हमें चूंकि बिल्कुल भी अलिफ बे नहीं पता होती हकीकत की, तो उनकी बात हमें बड़ी अच्छी लगनी शुरू हो जाती है कि हाँ, अल्लाह का कलाम ही तो है, और अल्लाह ताला ने सिर्फ अल्लाह के कलाम ही की तो हिफाजत की गवाही दी है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफिज़ून, हम इसकी हिफाजत करेंगे। कुरान हदीस मुबारक की हिफाजत की तो कोई जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने नहीं ली है, ठीक है। तो ऐसी बेवकूफ़ी की बातें करते हैं, और हम जो है वो उनके झांसे में आ जाते हैं। तालीमी औकात, आगे फरमाते हैं कि अब हर मदरसे के औकात मुख्तलिफ औकात होते हैं, सुबह 7 बजे से लेके दोपहर 2 बजे तक या 4 बजे तक मदरसों में मुख्तलिफ औकात होते हैं। कुछ जो होते हैं उनमें मतलब इशा तक क्लासेस हो रही होती हैं, बीच में कुछ ब्रेक्स आती हैं, खाने की ब्रेक होती है, हत्ता के शाम को खेलने की ब्रेक होती है, तकरार की ब्रेक होती है, आराम की भी कभी ब्रेक होती है, लेकिन इशा तक जो है वो क्लासेस चल रही होती हैं। और कुछ जो होते हैं वो बोर्डिंग मदरसे होते हैं, उनके अंदर फिर ब्रेक हो जाती है, तो रात को आराम किया जाता है। लेकिन ये मदरसा ऐसा था कि जिसके औकात थे 24/7, 24/7, 24/7 यानी 24 घंटे और पूरा हफ्ता, छुट्टी नहीं होती थी, ठीक है। छुट्टी का जो लफ्ज है ना, असल में ये बाद में आया है, ये पहले नहीं होता था छुट्टी, ठीक है। तो ईमान वाले की जिंदगी में छुट्टी नहीं होती, ठीक है ना, ईमान वाले के पास छुट्टी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। छुट्टी तो उसकी होगी जब उसकी मौत आएगी, ठीक है ना, मौत के साथ छुट्टी होगी। वो आदत अपना बयान फरमाता है ना कि बहुत पुरानी बात, कि मेरे बेटे ने एक दफा मुझसे कहा कि अब्बू, हर एक की छुट्टी होती है, किसी की जुम्मा हफ्ते को छुट्टी होती है, किसी की जुमेरात जुम्मा को छुट्टी होती है, किसी की हफ्ता इतवार को छुट्टी होती है, आपकी कभी छुट्टी नहीं होती? तो हजरत ने फरमाया कि बेटा, मेरी तो एक ही दिन छुट्टी होगी, मेरी तो एक ही दिन छुट्टी होगी जिस दिन मौत आएगी। है ना, इसी वजह से दुनिया काम की जगह, कब्र आराम की जगह और जन्नत इनाम की जगह, ये है मोमिन की जिंदगी। तो मशायख का जो काम होता है ना, ये गोया के जो आजकल हम थोड़ा सा उससे फेमिलियर होते हैं, जो आईटी के अंदर सपोर्ट डेस्क वाले लोग होते हैं ना, सपोर्ट वाले, डेस्क वाले नहीं, सपोर्ट वाले, जिनको जो है ना वो आईटी जो सिस्टम्स होते हैं ना कंपनियों के अंदर, उनको रन करके रखना होता है बस। क्योंकि ये जो सुपर कंप्यूटर्स होते हैं, मेन फ्रेम तक तो पता नहीं होते हैं कि नहीं होते हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स जो पूरे पूरे जो है वो दुनिया जहां के नेटवर्क चला रहे होते हैं, ये एक लम्हे के लिए भी डाउन नहीं हो सकते। अगर ये डाउन हो जाए, ये रुक जाए, तो फिर यानी अनइमेजिनेबल नुकसान हो जाएगा। तो इनको जो सपोर्ट करने वाले लोग होते हैं, ठीक करने वाले लोग होते हैं ना, उनकी कोई छुट्टी नहीं होती, उनको किसी वक्त भी कॉल किया जा सकता है और उनके लिए यानी दे आर 24/7। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट जो है ना थोड़ा बहुत वहां पे नजर आता है, लेकिन जो मशायख का काम होता है ना, इसमें कोई छुट्टी नहीं होती, दिन रात। और खुसूसन आज के दौर के अंदर जब से व्हाट्सएप आया है ना, तो व्हाट्सएप के जो मशायख व्हाट्सएप के ऊपर हैं, उनकी तो जो थोड़ी बहुत पहले होती थी ना प्राइवेट टाइम अगर किसी का, वो भी खत्म हो गया। ठीक है, क्योंकि व्हाट्सएप जो है वो फ्री है। ठीक है ना, पहले लोग थोड़ा सा हम वो करते थे कि यार भाई थोड़ा पैसा लगेगा मैसेज करने में। ठीक है, अब व्हाट्सएप के ऊपर तो कोई पैसा भी नहीं लगता, और सामने से जो है ये भी होता है कि बच्चा ऑनलाइन है, लास्ट सीन कब थे, और जो है वो ब्लू टिक आ गया, राइट, सब कुछ पता चल जाता है अगले बंदे का। तो फिर इसमें तो फिर कोई छुट्टी नहीं होती। तो किसी वक्त भी नबी अलैहिस्सलाम उनको तालीम दे सकते थे, यानी मदरसा सुफा की भी कोई छुट्टी नहीं होती थी। चुनाचे आधी रात को भी नबी अलैहिस्सलाम ने सहाबा इकराम को सिखाया, तालीम दी, और सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम ने सीखा। ठीक है ना, अब ये जो सिखाया, तालीम दी जो होती थी ना, ये बुक नहीं होती थी, किताब सामने नहीं रखी होती थी कि बस कुरान मजीद, चलो भी कुरान मजीद जो है वो किताब है, निसाब है, तो बस कुरान मजीद पढ़ रहे हैं और फिर उसके अंदर जो है ना वो उसके अल्फाज सिखा रहे हैं, उसके जो है वो दीगर चीजें बता रहे हैं। नहीं, दिस वॉज ये चलता फिरता मदरसा था। इसके अंदर कुरान मजीद की तफसीर जो है वो तो एक हिस्सा था खाली इस तालीम का। ठीक है, लेकिन आदाब की तालीम इसके अंदर जो है वो, हिकमत की तालीम इसके अंदर जो है वो, किरात की तालीम इसके अंदर, हर चीज इसके इस इल्म के अंदर शामिल थी। ठीक है, तो यही जो है ना असल नॉलेज होती है, जिसके जो ना ये रिस्ट्रिक्टेड नहीं होती किसी किताब से या किसी जो है वो एक सेट करिकुलम, बस इतना ही पढ़ाना है और उसको खत्म करवा देना है। वो तो एग्जाम बेस्ड तालीम होती है, वो तो बेसिकली प्रिपरेशन फॉर एग्जाम होता है, जिसको कि आपने किसी आपका एक करिकुलम होता है, निसाब होता है, कहा भी इसमें इस वाले इम्तिहान के अंदर ना किताब के इस सफ़े से इस सफ़े तक आएगा, या इस किताब में से सवाल आएंगे, तो फिर वो किताब क्यों पढ़ा रहे होते हैं, ताकि एग्जाम जो है वो उसमें सवालों के सही जवाब दे सकें और जो है वो नंबर अच्छे आ सकें। ठीक है ना, वो तो एग्जाम बेस्ड चीज़ होती है, वो जरूरी नहीं है कि उससे जो है वो इल्म भी हासिल हो रहा हो, उससे सीने के अंदर नूर भी आ रहा हो, उससे जो है वो दिमाग भी जो है ना वो रोशन हो रहा हो, उससे बात भी समझ में आ रही हो, नहीं, ये कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, तो नबी अलैहिस्सलाम की तालीम जो थी ना, वो प्योर नॉलेज बेस्ड तालीम थी। यतलु अलैहिम आयाति ही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुम अल-किताब वल हिकमा, हिकमा भी इसके अंदर आ जाती है और किताब का इल्म भी इसके अंदर आ जाता है, और इसके अंदर तज़किया भी आ जाता है, गलतियों की इसलाह, चाहे वो सोच की गलतियां हों, चाहे वो फिक्र की गलतियां हों, चाहे वो अकीदे की गलतियां हों, चाहे वो अमल की गलतियां हों, चाहे वो इखलाक की गलतियां हों, सारी की सारी गलतियों की इसलाह युज़क्कीहिम के अंदर शामिल हो गई। ठीक है, तो फरमाते हैं कि आधी रात को भी नबी अलैहिस्सलाम सहाबा किराम को सिखाया, जैसे तहज्जुद पढ़ते हुए उमर रतान की गलती की इसलाह करी कि उमर ने इतना जोर से नहीं पढ़नी है। ठीक है ना, और अबू बकर सिद्दीक रतान की भी गलती की इसलाह करी, अबू बकर इतने आस्ता नहीं पढ़ना है जितना कि आप पढ़ रहे हैं, इल्म इसी को तो इल्म कहते हैं। ठीक है, और सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम ने सीखा, दिन में भी सीखा और रात में भी सीखा, 24 घंटे ये तालिबे इल्म के लिए, ये तलबा इल्म के लिए फारिग थे। ठीक है, तो मुस्तकिल का एक तरबियती निज़ाम चल रहा था, और इसके लिए जो है ना वो आजकल अगरचे के अगर कोई ऐसा मदरसा हो जिसके अंदर जो है ना वो मुरब्बी और उस्ताद दोनों मिलके काम कर रहे हो, या कोई एक ही पर्सनैलिटी के अंदर मुरब्बी भी हो और उस्ताद भी हो, और वो 24 घंटे जो है वहाँ पे डेडिकेटेड हो, अगरचे कि बेशक घर से आते जाते रहते हों, लेकिन करीब कभी भी अवेलेबल हो सकते हैं। तो आज भी ऐसा मदरसा हो सकता है, लेकिन बदकिस्मती से और बल्कि हमारे गुनाहों की वजह से, हमारे नाकदरी की वजह से, रिजालुल्ला ऐसे जो रिजाल होते हैं ना, वो दुनिया से उठते चले जा रहे हैं। इसी वजह से कह देते हैं कि ये कहतुर रिजाल का दौर, कहतुर रिजाल का, क्योंकि हमने रिजाल की जो है वो कदर नहीं करी। अल्लाह ताला ने उनको अपने पास बुला लिया और बड़ी तेजी से बुलाए चले जा रहे हैं। तो इस वजह से जो है ना, वो ऐसे मदरसे अब बहुत कम मिलते हैं या समझने के ना होने के बराबर होते हैं। तो आज के दौर के अंदर जो है ना, ये बात बहुत ज्यादा महसूस की जा रही है कि ये जो 24/7 वाली तरबियत है ना, ये वालिदैन को करनी, वालिदैन को खुद इन चीजों को सीखना होगा, जिसको तालीम बालिगान कहते हैं, ठीक है ना। बचपन में तो सीख करके नहीं दिया, बचपन में तो सीख करके नहीं दिया, तो अब जो है ना, बचपन के वो इंस्टीट्यूशंस भी मौजूद नहीं है जिसके अंदर जो है वो बच्चों को सिखाया जा सके। अब बड़े होकर के अगर अकल आई है, समझ आई है कि यार हमने क्या कर दिया, हमने अपनी जिंदगी गंवा दी, तो अब जो है ना, इस इल्म को खुद हासिल करें और अपने बच्चों की खुद तरबियत करें, अपने बच्चों की खुद तरबियत करें, खुद सीख सीख करके आगे सिखाएं। किसी को आप आउटसोर्स नहीं कर सकते, अब बच्चों को ना किसी के हवाले नहीं कर सकते कि जाओ जाकर के मदरसे में जो है ना, वो आपको बोर्डिंग स्कूल में एडमिशन करवा दिया, बोर्डिंग मदरसे में एडमिशन करवा दिया, अब वहां पे जो है ना, वो सब कुछ इसको सिखा दिया जाएगा। नहीं, ये काम वालिदैन को खुद करना होगा, ये घर में करना होगा, ये काम घर में करना होगा, ठीक है। मदरसों के ऊपर भी अब आप जो है ना, वो रिलाय नहीं कर सकते, सिंपल एज दैट, कि भाई क्वालिटी जो है होती है वो नीचे आ रही है और रिसोर्सेज अब अवेलेबल नहीं है, और बहुत मामला जो है वो जाहिर है मदरसों के लिए भी बहुत मुश्किल खड़ी हुई हुई है। अंदरूनी मुश्किल भी हैं, बैरूनी मुश्किल भी हैं, हर किस्म की मुश्किल है। अपना काम बेसिकली करना पड़ेगा, टू कट इट शॉर्ट, ठीक है ना, टू कट द स्टोरी शॉर्ट, अपने काम से जो है ना, वो पहलू तही करके किसी दूसरे के, कहते हैं ना, वो मत्थे मार करके काम नहीं होने वाला है। तुलबा का इम्तिहान और मुमतहन का तयन, तो वक्त अगर चुके हो चुके हैं, अगर 5 मिनट आप लोग थोड़ा दे दें, और ये बस ये पढ़ना कह रहा था कि हर मदरसे में ये होता है कि जब पढ़ाने वाले पढ़ाते हैं तो आखिर में उनका इम्तिहान भी लिया जाता है, और इम्तिहान के लिए बाहर से मुमतहिन बुलाए जाते हैं। इन्विजिलेटर जो है वो बाहर से आ रहे होते हैं जब बोर्ड का इम्तिहान होता है। तो चुनाचे जब सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने नबी अलैहिस्सलाम से इल्म पाया तो उनका इम्तिहान भी लिया गया, और उसके लिए अल्लाह ताला खुद मुमतहिन थे, ठीक है ना। यानी अल्लाह ताला तो अर्श पर है ना, तो वो गोया के एक्सटर्नल इन्विजिलेटर, एक्सटर्नल एग्जामिनर। तो चुनाचे इरशाद बारी ताला है, उलाइकल्लज़ीन इम्तिहान का लफ्ज इस्तेमाल किया अल्लाह ताला ने, ठीक है। तो यही ये वही लोग हैं कि जिनके दिलों को अल्लाह ने खूब जांच कर तकवा के लिए मुंतखब कर लिया है, जांच कर, इम्तिहान लेकर के, जायजा लेकर के अल्लाह ताला ने जांच पड़ताल की कि इनके दिलों में तकवा है या नहीं है, यानी जो तरबियत में रहे ना ये मेरे महबूब की, तो तकवा आया कि नहीं आया इनके दिलों के अंदर। तो अल्लाह ताला ने बकायदा टेस्ट किया इनको, अगरचे कि अल्लाह ताला के इल्म में सब कुछ है, लेकिन अल्लाह ताला ने पसंद फरमाया है कि तदरीजन तदरीजन असबाब के जरिए से दुनिया के अंदर काम करते हैं, पता अल्लाह ताला को सब कुछ है पहले से। अल्लाह ताला के लिए पास पास नहीं है, जैसे हमारे लिए पास पास्ट होता है, अल्लाह ताला के लिए पास्ट और प्रेजेंट और फ्यूचर। एक किसी बच्चे ने, पता नहीं वो क्लास में सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं, बड़ी अच्छी बात लिखी कि भाई अल्लाह ताला के लिए तो एवरीथिंग इज ऑन द सेम प्लेन, हर चीज एक ही लेवल के ऊपर है, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, ठीक है ना। तो उनका सवाल भी ये था कि फिर ऐसा क्यों, फिर वैसा क्यों, फिर ऐसा क्यों, फिर वैसा क्यों, है ना। तो भाई हसीनों को हर बात सजती है, सब कुछ अल्लाह ताला के लिए एक प्लेन के ऊपर है, लेकिन अल्लाह ताला अल्लाह ताला है भाई, ठीक है ना। तो अल्लाह ताला ने पसंद किया कि टेस्ट भी लेते हैं और जो है वो ये भी करते हैं, फिर उसके बाद वो करते हैं, तदरीजन स्टेप बाय स्टेप काम करते हैं। तो अल्लाह ताला ने जांच पड़ताल की। अच्छा, इससे मुश्किल मुश्किल इम्तिहान और कोई नहीं हो सकता कि दिलों का हाल जानने वाली जात खुद अपने बंदों के दिलों का इम्तिहान लें और उनकी जांच पड़ताल करें, ठीक है। जैसे कि हमारे मशायख है ना, उनको तो दिलों का हाल नहीं पता होता हमारे मशायख को, लेकिन बसीरत भी कोई चीज होती है, तो बसीरत की वजह से जो है ना, जो जो सालिकीन होते हैं, मुरीद होते हैं, उनके अहवाल अच्छे खासे समझ में आ जाते हैं। तो अब जो है ना, कोई ऐसे सालिक साहब जो है ना, वो शेख साहब के पास आते हैं और शेख साहब को गोली देने की कोशिश करते हैं, उल्लू बनाने की कोशिश करते हैं, है ना, झूठ बोलने की कोशिश करते हैं। तो शेख साहब जो है ना, फिर दिली दिल में सोच रहे होते हैं कि यार कितना, क्या हजरत जी के अल्फाज है बल्कि, कितना महारत के साथ झूठ बोलने की कोशिश कर रहा है ये। हालांकि शेख साहब को पता होता है कि क्या कर रहा है, ये झूठ बोल रहा है, पक्का पक्का झूठ बोल रहा है, लेकिन चुप होते हैं, उसका लिहाज कर लेते हैं। बहुत सारी मसलियतें होती हैं, मुंह पे उसको बता नहीं देते कि तुम उसे झूठ मत बोलो, ठीक है। तो भाई शेख साहब को तो एहतमाली दर्जे के अंदर पता होता है कि ये मुझसे झूठ बोल रहा है, अल्लाह ताला को तो यकीनी दर्जे में पता होता है कि सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है, दिलों का हाल जाने वाली बात है। ये सबसे बड़ा इम्तिहान होता है। लेकिन चूंकि उस्ताद ने इन शागिर्दों पर ऐसी मेहनत की हुई थी कि अल्लाह ताला उनके दिलों को देखकर खुश हो गए, अल्लाह ताला फरमाते हैं वा अल्ज़महुम कलिमत तक्वा व कानू अहक्का बिहा व अहला, कि उनको तक्वा की बात पर जमाए रखा और वे उसी के ज्यादा हकदार और उसी के अहल थे, ठीक है, तक्वा के, कलिमत तक्वा। और फिर उसके बाद आखिर में इनाम होता है कि जब कोई तालिबे इल्म अपने पेपर में पास होता है तो उस्ताद उसको इनाम दिया करता है। चुनाचे इन शागिर्दों को भी इनाम मिला, अल्लाह ताला ने उनके दिलों को देखा और अल्लाह को इतनी खुशी हुई कि अल्लाह ने ऐलान कर दिया, रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, अपनी रजा का ऐलान कर दिया कि अल्लाह उनसे राजी हो गया और वो अल्लाह से राजी हो गया। यानी कि वो अल्लाह से राजी हो गया फिर अल्लाह राजी हो, नहीं, अपना जिक्र पहले कर दिया, मैं पहले राजी हो गया इनसे, उसके बाद ही उनसे राजी हो गया। सुभान अल्लाह, कितना बड़ा इनाम मिला। कहते हैं कि उस्ताद की काबिलियत देखनी हो तो शागिर्दों को देखो, शागिर्द से उस्ताद की काबिलियत का पता चलता है। हम भी कहते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम की अजमत देखनी हो तो उनके शागिर्दों अबू बकर उमर व उस्मान अली रजी अल्लाह अन्हुम को देखो, उनको देखने से तुम्हें पता चलेगा कि उनके उस्ताद कितने अजीम थे, ठीक है। दरख्त अपने फल से पहचाना जाता है, उस्ताद अपने शागिर्दों से पहचाना जाता है। तो ये एक तरीका है उस्ताद की अजमत को समझने का, ये खाली एक वाहिद तरीका नहीं है, लेकिन ये एक बड़ा जबरदस्त किस्म का, ऑथेंटिक किस्म का तरीका है। तो रजा जो होती है अल्लाह ताला की ना, ये मशायख ने जो 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 तबकात बयान करें ना, कि अल्लाह ताला के कुर्ब के जो तबकात हैं, उन तबकात में से, उन लेवल्स में से सबसे ऊंचा लेवल जो है ना, वो रजा का है, अल्लाह ताला की रजा का लेवल है, उससे ऊपर और कोई लेवल नहीं, ठीक है। तो अल्लाह ताला ने सबसे ऊंचा लेवल जो है वो इन सहाबा कराम को अता फरमा दिया और कुरान मजीद में उसको उसकी गवाही दे दी, ठीक है। जज़ाकुमुल्लाह खैर, आपने इतनी देर वेट भी किया और एक्स्ट्रा टाइम भी सारे इसको दिया, तो मजीद दे के इंशाल्लाह जिंदगी बाकी तो बात बात की अल्लाह ताला मक्की दामत रकात उनको शिफा अता फरमाए, क्योंकि ये कलाम जो था उन्हीं का होता था। बात खत्म करते थे तो कहते हैं कि जिंदगी बाकी तो बात बात ही। वाखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।